بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. انساني فطرت میں ہے کہ بری چیزوں سے پرہیز صرف اسی وقت کرتا ہے جب اسے برا سمجھنے لگے. شروع میں ہوتا یوں ہے کہ ہم بری چیز کو برا سمجھتے ہیں, گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن ہماری خواہش یا ضرورت اتنی پریسنگ ہو جاتی ہے کہ ہم بحالت مجبوری وہ کام کر گزرتے ہیں. لیکن جب ایک کام ہم بار بار کریں تو ایک وقت آتا ہے انسان اسے روٹین میں کرنے لگتا ہے, ذہن اور دل سے اس کے برے ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو انسان اس برائی کو پھر برائی سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ اسے ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے. یہ جو ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگتا ہے, اور اگر اس کو ہم فوری طور پہ پریوینٹ نہیں کریں تو وہ سیاہی کا دھبا پھیلتے پھیلتے بالآخر پورے دل کو کور کر لیتا ہے. اس سے اصل میں مراد یہی ہے جو میں نے عرب سے عرض کیا. ضروری یہ ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے اور گناہ کو گناہ سمجھے, تو ہی جا کر انسان پھر برائیوں اور گناہوں سے رکا رہتا ہے. آج کل ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ مختلف ریزنز سے ہمارے یہاں برائی کو ہم برائی نہیں سمجھتے, اسے کرتے چلے جاتے ہیں. جھوٹ ہم بڑی روانی سے بولتے ہیں, اس کا احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اور حتیٰ کہ ایسی معاملات میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عادت جھوٹ بولنے کی عادت سے بڑھ کر ہماری سیکنڈ نیچر بن گئی ہے, تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. اب اس کیفیت سے نکلنے کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے, وہ ہے رب تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ کا ایک اسم مبارک یا باطنو, الباطنو لکھا ہوا ہے, تو اس کو جیسے یہاں میں نے ایک زمانے میں بات کرتے ہوئے قرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ورد کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم فرسٹ ہاف آف دی ڈے میں اس کا ورد کرتے ہیں تو نام کے ساتھ ال آ جائے گا, تو اگر ہم فرسٹ ہاف آف دی ڈے میں پڑھتے ہیں تو وہ الباطنو پڑھا جائے گا. अगर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हम पढ़ेंगे तो फिर या बात ही नहीं आएगा। तो अगर हम सुबह नमाज के बाद इसको 700 टाइम्स पढ़ लें अभी बात ही नहीं, तो इससे हमारी सोच पर जो पर्दे पड़े होते हैं, हमारी दुनियावी जरूरियात या ख्वाहिशात की वजह से, और हम अच्छे और बुरे की तमीज को भुला देते हैं, वो बहुत नुमाया होने लगती है इंसान में कि रब ताला के इस इसमें मुबारक की बरकत से हमारे अंदर एक एहसास ऐसा पैदा होगा कि जो हमें बुराई और गुनाह की तरफ जाने नहीं देगा। ये मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि जाने नहीं देगा, तो इसमें हमारी अपनी विल जरूर होनी चाहिए बुराई से रुकने की। ख्वाहिश हो हमारे दिल में, इरादा हो, इसे पढ़ा जाए तो हम पहचान पाएंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या काम हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हिस्सा हमारी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर हम ईशा के बाद इसको हम पढ़ेंगे 1300 मरतबा, तो ये कुर्बे इलाही का जरिया बनने लगेगा। लेकिन कुर्बे इलाही का हसूल सिर्फ तस्बीहात से नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें अपनी सोच और अपने रवैये इन दोनों को सुन्नत के मातहत करना होगा। तो सुन्नत का मातहत जब हम अपने रवैयों को कर लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा दर हकीकत कुरान की अमली सूरत है। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हम कुरान के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं आप गुफ्तगू की सहूलत के लिए ये कह देता हूं कि सुन्नत की पैरवी की जाए ताकि हम कुरान में दिए गए अहकामात की पैरवी कर रहे हों। तो जब हम एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं इबादत और नेकी, तो इन तीनों का जो मलगूबा है वो दर हकीकत हमें हासिल कर देता है कुर्बे इलाही को। अकेले तस्बीहात, अगर आपने तस्बीहात पे जोर दिया और मेरी तरह ना अमाल ठीक हुए ना मेरे रवैये ठीक हुए, तो रब ताला, क्योंकि रब ताला की दोस्ती का आसान तरीन, उसको हासिल करने का आसान तरीन तरीका यह है कि हम उसकी मखलूक से प्यार करने लगे। तो जब इंसान किसी से प्यार करता है तो ना तो उसकी तौहीन करता है इंसान, ना उसकी खामियों पर नजर रखता है, ना उससे कोई तवक्को रखता है रिटर्न में अपने प्यार के, ना उससे किसी जवाब की के जवाबन वो प्यार करे हमसे, उसकी भी तवक्को नहीं रखता। تو جب تک کہ ہم خلق خدا کے ساتھ پیار نہیں کرتے تو ہمارا رویہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. کہ سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بھی پیار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی دشمن کی بھی عیب جوئی نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ دوست ہے یا دشمن. یہ رویہ ہمارے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم خلق خدا کے ساتھ محبت کرنے لگے. تو جب ہم خلق خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو رب ہم سے پیار کرنے لگے گا. تو یہ رویہ ہمیں اپنانا ہوگا. لیکن بات اسماء حسنہ کی ہو رہی تھی تو عشاء کی نماز کے بعد, اور یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تسبیح کوئی سی بھی ہم پڑھیں اول و آخر درود شریف اس کے لیے مسٹ ہے. تو اس میں 11 مرتبہ اگر درود شریف ہم پہلے پڑھ لیں اور 11 بار بعد میں پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ ہم پھر پہلے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگیں گے. اور برائیوں سے رکنے لگیں گے, نیکی کی طرف راغب ہو جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں امید یہی ہے اللہ کی رحمت سے کہ پھر ہمیں اللہ کی دوستی نصیب ہوگی. شرط وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اسی پر نہ رہیں ہم کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, بلکہ اپنے رویوں کو درست کرنا زیادہ اہم ہو جائے گا. لاسٹ سنڈے ہم یہ سوال جواب دے رہے تھے. ان صاحب کا یہ غالباً یہ سوال تھا اس وقت انڈر ڈسکشن کے, پلیز ایکسپریس یور اوپینین ہاؤ دی کوانٹم فزکس مائٹ ایکسپینڈ دی اسپرچل سائڈ آف پیپل. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سائنسدانوں کے ساتھ یہ قصہ پیش آتا ہے کہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ریلیجس ہوتے ہیں, پھر ایک مقام آتا ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں, لیکن پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں تو رب کے وجود سے انکار نہیں کر پاتے, کنونس ہو جاتے ہیں کہ رب موجود ہے. اسی ضمن میں میں نے شاید عرض کیا تھا کہ جہالت یا علم کا نہ ہونا, لا علم ہونا کسی چیز سے برا ہے, لیکن کم علمی اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ کم علمی میں عام طور پر ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ انسان اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. وہی تباہی کا راستہ ہے. جہاں انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں, ये कहना तो बहुत ही खौफनाक हो जाएगा कि मैं सबसे अच्छा हूं। ये ख्याल कि मैं दूसरों से अच्छा हूं, बहुतों से अच्छा हूं, ये भी खतरनाक है बात, तबाही की तरफ ले जाएगी। इंसान उस वक्त तक सीखता है, आगे बढ़ता है, जब तक के उसके जहन में ये ख्याल रहता है कि मैं कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो नतीजा ये होता है कि वो जिस किसी से भी मिलता है उससे कुछ ना कुछ सीखता है, और ये सीखने का अमल सारी उम्र जारी रहता है। तो साइंसदान जब उस मकाम पर होता है कि बहुत गहराई में नहीं पहुंचा होता सब्जेक्ट की अभी, तो वो यही समझता है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस निज़ाम को चला रही है। लेकिन जब ज़्यादा इल्म की तरफ बढ़ता है तो रब के वजूद का कायल हो जाता है। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स है, ये उस मकाम पर इंसान को हेल्प करती है कि वो कुदरत या रब ताला उसके वजूद का कायल हो जाए। क्योंकि उस मकाम पर जब बहुत गहरा चला जाता है सब्जेक्ट में, तो वहां उसे एहसास होता है कि इल्म की वुसअत क्या है, और वो तो अभी इल्म के कतरे से वाकिफ नहीं हुआ। तो जब अपने आप को वो बहुत छोटा समझने लगता है तो रब ताला की ताकत का कायल हो जाता है। तो यूं ये हेल्प कर देती है। इनका तीसरा सवाल, जवाब इसका आसानी से दिया तो जा सकता है डिटेल में, लेकिन शायद वो इतनी डिटेल में जवाब देना मसलहत के खिलाफ हो जाए कि ये गलत सिमत में ले जाएगा इंसान को। इनका है, व्हाट इज योर ऑप्शन ऑन यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ये असल में मसला वादतुल वजूद की बात कर रहे हैं, which says that all manifestations eventually dissolve to one field of energy and there is no separation in essence. Separation we experience at the level of reality we exist is only illusionary. ये जो unified field theory है, इस मौजू पे दो तीन बार बात हुई। ये अंग्रेजी तर्जुमा है मसला वादतुल वजूद का। इसकी इब्तदा बहस की डाली थी महीउद्दीन मोहम्मद इब्ने अरबी ने। वो इल्म के इतने बड़े मकाम पर थे और इस तरह की मेंटल फैकल्टीज के मालिक थे कि उन्होंने अपने वक्त से बहुत पहले ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी जिन पर बदकिस्मती से इख्तलाफात हुए मुसलमानों में, और मुसलमान का खून बह गया उन इख्तलाफात के नतीजे में। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि आज भी मोहम्मद इब्ने अरबी की मुख्तलिफ थ्योरीज जो उन्होंने बयान की, वो अभी भी कबल अज़ वक्त है। हमारा इल्म अभी वहां तक नहीं पहुंचा कि हम उन थ्योरीज को समझ पाए, उसकी गहराई को सोच पाए। नतीजा ये है कि हम गलतफहमियों का शिकार होते हैं और उस पर फिर इसरार करते हैं अपनी राय पर, और यूं इख्तलाफ राय, ज़ाती इख्तलाफात का रंग लेते हैं और वहां से झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहां इस जगह हम अपनी गुफ्तगू को उन चीजों से बचाए रखते हैं जहां इख्तलाफात हों, किसी के अकीदे से हम इख्तलाफ यहां नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मिशन ये नहीं है कि लोगों में इख्तलाफात पैदा हों। हमारा मिशन तो ये है कि लोगों में यकजाई पैदा हो जाए। तो उन मामलात को हम अवॉइड करते हैं जिनसे किसी का दिल दुख जाए, दिल आजारी हो जाए, किसी के अकीदे पर उंगली उठे। मैं इस सवाल का जवाब उस गहराई से नहीं दे पाऊंगा जिस गहराई से इन सवाल करने वालों ने जिस तवक्को से किया है, क्योंकि उसमें फिर दूसरों की दिल आजारी होती है और मुसलमान दूसरे की दिल आजारी से बहुत दूर रहता है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इनका चौथा सवाल ये है, व्हाट डज इंटरवीन ऑफ बॉडी एंड सोल मीन्स। हमारा जिस्म, इसकी जो बुनियादी असास है जहां से ये बना है, वो पानी का एक कतरा है जिससे हमारा जिस्म वजूद में आता है, एक प्रोसेस से गुजरता है। वो दो तीन मर्तबा हमने उस मौजू पे यहां बात की। ये असल में घर है हमारी रूह का, और रूह की तख्लीक हुई है नूर से, होता यह है कि हमारे जिस्म में एक नफ्स है, उसकी ख्वाहिशात ऐसी भी होती हैं जो पसंदीदा नहीं है, जो मुसलमान को नहीं करनी चाहिए, रब मना करता है उससे। और अगर उन ख्वाहिशात को हम पूरा करने लगे, उनके पीछे भागने लगे, तो हमारे जिस्म पर भी उसके असरात नमूदार होने लगते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि यह आदमी बड़ा नेक है क्योंकि इसके चेहरे पर नेकी का नूर है, बिल्कुल उसी तरह हमारे चेहरे से गुनाहों में लुथड़े होने का भी एहसास होने लगता है। वो चेहरा बेनूर हो जाएगा। हमारी रूह फलती फूलती है, सेहतमंद होती है, तवाना होती है जब हम नेक काम करते हैं, जब हम अपना ताल्लुक रब के साथ मजबूत रखते हैं, बल्कि हमारी रूह रजू रखती है अपने खालिक की तरफ, उससे हमारी रूह तवाना होती है। अब अगर ये हो जाए किसी तरह, जो कि मुमकिन नहीं होता, लेकिन एक मिनट के लिए हम फर्ज कर लें कि हमारी रूह तो तवाना रहे, लेकिन हमारा जिस्म जो है वो हमारे नफ्स की ताबेदारी करता हो, तो दोनों 180 डिग्रीज अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, जो कि मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता ये जरूर मुमकिन है कि हम अपने नफ्स की मुखालफत करें, उसको कुचल दें हम, और हम उस रास्ते पर चल निकलें जो रब ताला ने बताया है और उसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। तो अगर उस राह पर चल निकले तो हमारा जिस्म भी नेकी की तरफ चला गया और हमारी रूह भी नेकी की तरफ चली गई। तो यूं ये इंटरट्वाइन हो जाएंगी जिस्म और रूह। इबादत रूह की गिज़ा है और अपने जिस्म को नेकी की तरफ रागिब करें कि हमारे आंखें कोई गुनाह ना करें, हमारे हाथ गुनाह ना करें, इससे दूसरे आज़ा, तो नेकी की तरफ चले जाएंगे हम। तो यूं ये यकजा हो जाएंगे नेकी के लिए और उसी से चेहरे पर नूर पैदा होता है, आंखों में चमक आती है इंसान के। इनका पांचवा सवाल है कि Does Allah want all the religions to come under one umbrella? If so, how this will be achieved? बात यह है कि जितने भी इल्हामी मजहब हैं, इल्हामी कुतब हैं, वो दर हकीकत एक ही है। फर्क ये है कि जिस जमाने में जो किताब उतारी गई है वो उस जमाने में के इंसान की जहनी सतह के मुताबिक थी। इंसान तरक्की करता गया, उसका जहन इर्तकाई मनाजिल तय करता गया, उसका इल्म आगे बढ़ता गया। जो जो इंसान की जहनी इर्तका होती गई, इल्हामी किताबों का मैसेज उसी लिहाज से एडवांस होता चला गया, हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दर हकीकत यूं समझना चाहिए कि हर इल्हामी किताब पहले से उतरी हुई इल्हामी किताब का नया एडिशन था। तो नए एडिशन में बहुत सी एडिशंस और होती गई, नॉलेज एडवांस होता गया। जैसे हम कोई एक सब्जेक्ट, मिसाल ले लीजिए केमिस्ट्री, क्लास सिक्स में जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं होती है, वो केमिस्ट्री है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड वो छठी क्लास के स्टूडेंट की जहनी सतह के मुताबिक होता है। मैट्रिक में हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, होती वो केमिस्ट्री है, लेकिन वो उस किताब, उस केमिस्ट्री के नॉलेज से एडवांस्ड नॉलेज होता है जो हमने क्लास सिक्स में पढ़ी है। हम बीएससी में वही केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो और एडवांस हो गई होती है, हत्ता कि हम उसमें डॉक्टरेट करते हैं तो वो बहुत एडवांस लेवल की केमिस्ट्री होती रहती, केमिस्ट्री है। हम ये नहीं कह सकते कि जो क्लास सिक्स में हमने पढ़ी थी वो केमिस्ट्री नहीं थी। तो कुरान पाक में दीन मुकम्मल कर दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए उसने दीन को मुकम्मल कर दिया। ये रब ताला ने कुरान में भी कहा कि हमने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। तो अंडर वन अम्ब्रेला का तो सवाल नहीं पैदा होता। बात यह है कि ये इल्हामी किताबें, बरहक किताबें हैं। हमारा ईमान कामिल नहीं होता था वक्त के हम उन पर ईमान ना ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगंबर तशरीफ लाए उन पर अगर हम ईमान ना लाए तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, कामिल नहीं होता। तो बात सिर्फ ये है कि जो इल्हामी मजाहब पहले हैं उनको सुपरसीड कर रहा है लेटर पैगाम उसका, लेकिन जो गैर इलाहामी मजहब हैं वो मिट जाएंगे कि रब अपना दीन फैला के रहेगा। तो अंडर वन अम्ब्रेला नहीं आएंगे बल्कि मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो इसी पैगाम के पहले एडिशंस हैं वो इसी दीन में समो जाएंगे। ये रब का वादा है कि मेरा दीन फैल कर रहेगा, पूरी दुनिया इसी दीन की पैरोकार हो जाएगी। इनका एक सवाल ये है कि डू यू सी द रोल ऑफ रिलीजन इन फ्यूचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इफ इट डज इंक्रीज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डिक्रीज इन अदर पार्ट्स, व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस? पहली बात तो ये है कि हमें इस्लाम के बारे में बहुत क्लियर हेडेड होना चाहिए, इसके हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये मजहब नहीं है, ये दीन है। तो हमारी जिंदगी में इसके रोल का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना उसका सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि मुसलमान की तमाम तर जिंदगी उस दीन के मातहत है जो रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया है। बात सिर्फ इतनी है कि हम किस हद तक अपनी जिंदगियों को दीन के मुताबिक करते हैं। जितना और हमें, हम पर फर्ज है कि हम अपनी जिंदगी को कुलियतन दीन के मातहत कर दें, अपनी जिंदगी को हम दीन के मुताबिक गुजारें, ये हम पर फर्ज है। और जहां कोताही हम करेंगे उसके लिए हम आंसरेबल हैं अल्लाह ताला को। तो कोताही हमारी है, दीन का रोल कम या ज्यादा होने का कोई सवाल नहीं है, ये हमारी कोताही है कि हम अपने आप को दीन के मातहत किस डिग्री तक करते हैं। तो हमें अपने आप को 100% दीन के मुताबिक ढालना है, दीन हमारे मुताबिक नहीं ढलेगा। तो इसलिए दीन के रोल को डिटरमिन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये एग्जामिन किया जाना चाहिए कि हमने अपने आप को दीन के मुताबिक कितना ढाला है। इनका एक सवाल है कि इज नफ्स ओनली आर एनिमलिस्टिक इंक्लिनेशन और इट इज मोर देन दैट, व्हाट इज द नेचर ऑफ नफ्स। इस मौजू पर भी कई बार यहां बात हुई। अगर ये सवाल करने वाले साहब हमारी पहली गुफ्तगू सुनते रहे हैं तो इन्होंने कई मकामात पर ये सुना होगा कि अक्सर बेशतर मैं अर्ज किया करता हूं कि इंसानी जिस्म में 9 लताइफ हैं, वो पूरे के पूरे भी बयान किए, उनकी तमाम डेफिनेशंस भी बयान हुई भी हैं। नफ्स उन्हीं 9 में से एक लताइफ, उन्हीं 9 लताइफ में से एक है। और ये हमें बुराई की तरफ रागिब करता है। क्योंकि बुराई अकल से दूर है, तो हम उसको हैवानी ख्वाहिशात का भी नाम दे देते हैं, जो नफ्स की ख्वाहिशात हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली एक्सप्रेसिंग वन ओन सेल्फ, कि आप उसको नफसानी ख्वाहिशात कह लीजिए, हैवानी ख्वाहिशात कह लीजिए, शैतानी ख्वाहिशात कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये जो बुराई की तरफ रागिब हम होते हैं उसको हम नफ्स कहते हैं, वही उसकी नेचर है। इनका 8वां सवाल है कि प्लीज प्रे फॉर मी टू बी ऑन स्ट्रेट पाथ व्हिच अल्लाह इज हैप्पी विद। हमें ये सोचना चाहिए कि पैगंबर तो अल्लाह के बड़े पसंदीदा लोग होते हैं, अल्लाह के बहुत मुकर्रबीन में से होते हैं। रब ताला अपने पैगंबरों की दुआएं सुनता है, क्या कभी किसी पैगंबर ने ये दुआ की कि या बारी ताला मेरी सारी उम्मत को नेक कर दे। उन्होंने तो तबलीग की और उस सिलसिले में उन्होंने मसाइब भी उठाए, तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं, मशक्कत भी उठाई है, और फिर हमारे यहाँ नेकी और बुराई दोनों के लिए अजर और सजा है, सदा और जजा का निजाम वो खुद हमारे अमाल पर है। कि जैसे हमारे अमाल हैं अकॉर्डिंगली हमें जजा या सजा मिल जाएगी। तो इसका ताल्लुक, इन नेकी की राह पर चलने का ताल्लुक तो हमारे अमाल के साथ है, हमारी एफर्ट के साथ है, उस कोशिश के साथ है कि जो हम नेकी की राह पर चलने के लिए करते हैं। हाँ, दुआ काम आती है कि हम बहसियत इंसान भरपूर कोशिश करते हैं कि हम नेकी की राह पर चलें और रब ताला से दुआ करते हैं कि या बारी ताला तो हमें नेकी की तौफीक अता फरमा, या बारी ताला हमारी कोशिशों को बराबर कर दे कि हम तेरी राह पर चल सकें, तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सकें। तो वो दुआ तो है, ठीक काम आती है, सपोर्ट करती है हमें, लेकिन असल चीज ये है कि हम अपने नफ्स के साथ लड़ें और नेकी की राह पर चलने की पूरी कोशिश करें और साथ अल्लाह से दुआ करें कि या बारी ताला तो हमें नेकी की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमारी कोशिश में बरकत अता फरमा और इन्हें बराबर कर दे, तो ठीक है। लेकिन ये कि मैं अपनी राह चलता चला जाऊं और दूसरों से कहूं कि मेरे लिए दुआ कर दें, काम नहीं बनेगा। आप नेकी की राह पर चलने की कोशिश करें, अपने साथ लड़ें और साथ रोजाना सुबह शाम दोपहर हर नमाज के बाद रब ताला से दुआ करें कि या बारी ताला मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा दे, या अल्लाह मैं जो तेरे बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ इसको तू बराबर कर दे, इसमें बरकत अता फरमा दे, तो यकीनन अल्लाह ताला मदद फरमाता है और आपको नेकी की राह पे चलने में मदद कर देता है। एक सिर्फ एक सवाल इनका बाकी रह गया, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे उस पर बात करेंगे, उसके बाद दूसरे जो सवाल आते हैं वो फिर उन पे उस वक्त तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।